चारित्र मोक्षम न लेक्चर नंबर 12।
ओम नमः सिद्धे
और बहुत गहन उसमें से अर्थ निकलते हैं, परंतु जब तक समझ में नहीं आता तो वहां तो कोई संदृष्टि लिख के गए आचार्य हम तो थोड़ी फुर्सत। रुद्रमणि साहब ने तो एक एक संदृष्टि का अर्थ बताया, जैसे स्कूल के पहली क्लास के केजी के क्लास के बच्चों को एक ऐसा कैसा लिखना, एक ऐसा लिखना, 1 2 3 4 कैसे लिखना, ऐसे उन्होंने एक एक संदृष्टि कैसे लिखना है वो बात बताई। वो जीवकांड में भी बताई, कर्मकांड लक्की साहब ने बताई, और फिर उसके गणित कैसे करना, किसको कैसे पढ़ना, वो सब एक एक करके उन्होंने समझा। वही तो कहाँ से मिला, उनके तो कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ लिपि में संस्कृत भाषा में ग्रंथ थे उनके, और उनके सामने ना अफकोर्स धवला जयलोला में वो तो आगे की चर्चा है, उसमें इसका एक्सप्लेनेशन नहीं। हम जहाँ जहाँ धवला में अटकते थे वहाँ हमको सम्यक ज्ञान चंद्री का जीवकांड, कर्मकांड और लब्धिसार का आधार लेना पड़ा बहुत बार धवला के, और उसमें सब वही मान मिला जो वहाँ दिखा था। तब ये ख्याल नहीं आया था कि इतनी सूक्ष्मता इन ग्रंथों में भी भरी पड़ी। अभी भी जयधवला आदि में जितना माल है वो सब जयधवला में, तो क्या है सूत्रों की अर्थ करते हैं, कभी आगे का विषय लिया, ये श्रेणियों का विषय भी पहली बातें कुछ समझाई फिर अन्य कुछ बातें, ऐसा उल्टा पुलटा है। लब्धिसार में जिस क्रम से जिस ऑर्डर से उन्होंने पूरी पद्धति या श्रेणी बताई है ऐसा वहाँ पर भी नहीं, वहाँ है बहुत गहन चर्चा, परंतु किसी पॉइंट को उन्होंने आगे तक बढ़ाया है ऊपर की तक, फिर पहले अपूर्वकरण तक आके उसमें क्या होता है ऐसा होता है, फिर आगे पीछे का है वो उसको समझना पड़ता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। यहाँ जितनी सरलता से उन्होंने डायरेक्ट एक 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 प्रोसेस बताया है वैसा वहाँ नहीं है, है भले वो चर्चा गहन जा रहा। तो जितनी चर्चा टोडरमजी साहब ने, उनके सामने कोई अन्य भी ग्रंथ नहीं थे उन्होंने, और इतनी सरलता कि कहीं कहीं लिख दिया कि इसका अर्थ मुझे नहीं बराबर समझ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कैसा ऐसे भी नहीं, इतनी सरलता। हाँ, और ऐसा भी लिखते हैं ना कहीं मैं चूक जाऊँ तो अधिक बुद्धिमान हो तो इसको सुधरा, इतनी निर्माता किसके हो है, ये अभूतपूर्व कार्य किया है उन्होंने। हमें हमारे सामने तो रेडीमेड मिला है माधव, हमको क्या उसमें, मैं तो पढ़ा ही कि उसमें कुछ इसलिए कुछ विशेष भाषित हुआ है, उसमें अपनी कुछ अधिकता कुछ नहीं है उसके अंदर। आचार्य कल्प कहा है बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है, जो हमारे कर्णानुयोग के ग्रंथ थे जो पढ़ने मात्र के अरे खोल के देखते तो भी डर लगे ऐसे थे, तो उन्होंने कितना सरल बनाया, बहुत उनका उपकार है। तो उन्होंने संदृष्टि हमारे घर में भी ये सब संदृष्टि का जो पूरा भी, और घर में उसकी शूटिंग भी की, व्हाइट बोर्ड पर कलर चॉक है वो तो पेन आते हैं ना, हमारा घर कितना छोटा है आपने देखा है, तो सामने लोग पर्दा करेंगे फिर मैं बैठूंगी फिर वो चार गोलम बनाऊंगी फिर एक बाजू ये बैठेंगे वो स्टील के ऊपर वो कैमरा वगैरह लगेगा लाइट लगेगी, तो क्या क्या कर हम क्या क्या करते हैं आपको पता नहीं चलता, इतना सा छोटा घर है हमारा। वो सारी संदृष्टि हमने पूरी जीवकांड की भी कर्मकांड की भी लब्धिसार की भी पूरी उसकी शूटिंग, यानी जैसे स्कूल में बच्चों को सिखाते ऐसे एक एक संदृष्टि का था, जो यहाँ से आधार ग्रंथों के आधार से जो टोडरमन जी ने समझाया वही हमने बोर्ड पर करके समझा, तो विषय समझने में बहुत आसानी हो जाती है। ये आप लोगों का भी काम है इसको अभी और आगे ले जाने, आपकी यंगस्टर्स है आपके पास तो बहुत सारे साधन भी हैं, हम तो वही वो बोर्ड और चौक बोर्ड से भी कर देते हैं ना। हाँ, अभी अपना विषय चलेगा, ये हमने क्रमकरण की बात देखी, यहाँ स्थितिबंध घटता चला जाता है, इतना ही नहीं उसका क्रम भी उलट पुलट हो जाता है, इसी को यहाँ क्रमकरण के रूप में आता है। उसके बहुत विस्तार से हमने कौन सा क्रम क्या होता है उसके बाद क्या होता है, यानी हम थोड़ा कल्पना कर सकते हैं कितने बार उन्होंने संख्यात हजार स्थितिबंधाक्षरण संख्यात हजार स्थितिबंधाक्षरण ऐसा बताया है कि बोलते बोलते हमें भी तकलीफ होने लगी, यानी कितने अंतर्मूर्त चले जा रहे हैं बीच में, संख्यात हजार का अर्थ होते हैं अनेक करोड़ों भी ऐसा होगी, केवल संख्यात हजार दो चार हजार ऐसा भी उसका अर्थ नहीं होता, यानी ऐसे कितने प्रोसेसेस इन बिटवीन चल रहे हैं है ना, और फिर भी अभी संख्या का भाग शेष है अनिवृत्तिकरण का, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अब देशघातीकरण होगा, फिर वो गैस तैयार होगा वगैरह वगैरह बातें चलेगी, फिर एक एक प्रकृति का उपशम होगा। उपशम श्रेणी की बात चल रही है ना, नवे गुणस्थान में बहुत सारा प्रोसेस वो यहीं पर हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर। एक दोपहर प्रश्न आया था, अंतर कोड़ा कोड़ी भी बहुत प्रकार के होंगे? हाँ, बहुत प्रकार के, जैसे अंतर्मूर्त अनेक प्रकार के होते हैं, बात सही है। एक प्रश्न है, अंत कोड़ा कोड़ी सागर फिर से बताना। अंत कोड़े ने करोड़ से भी छोटा, एक करोड़ सागर से कम, उसको कहेंगे अंत कोड़ी। अंत का अर्थ होता है उससे कम, अंतर्मूर्त इसको अंतर्मूर्त कहते हैं, मूर्त से कम, वो सारे अंतर्मूर्त। कोड़ा कोड़ी यानी करोड़ गुणा करोड़ सागर से कम, उसको कहेंगे अंत कोड़ा कोड़ी सागर। अंत कोड़ी सागर यानी करोड़ सागर से कम, उसको कहेंगे अंत कोड़ी सागर। तो अभी यहाँ ये तो प्रश्न हुआ था, 171 पेज पर आते
हैं। हाँ,
हाँ विशुद्धि इस तरीके से बढ़ती है कि क्योंकि उसको असंख्या गुणा था, वो असंख्या गुणा हीन होने जा रहा है, तो एक ही बड़ा अक्षर हो जाता है। जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती है तो भी स्थिति बंध अंतर्मुक्त उतना ही होता है, ये भी होता है ना, परंतु उसकी विशुद्धि विशिष्ट स्टेज तक पहुंची तो अभी उसका क्रम बदलता है, इतना ही समझना। विशुद्धि में एकदम जम होता है अगर ऐसी कोई बात नहीं आती, वो तो प्रति समय अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा हो रहा है, और अनिवृत्तिकरण परिणाम है, प्रत्येक समय का सुनिश्चित एक परिणाम है, अलग अलग जीवों में अलग अलग वेरिएशन भी नहीं है, ये भी उतना ही सच है। अब आते हैं, अब क्रम करण के बारे में कोई प्रश्न है तो पूछना, नहीं तो अभी देशघातीकरण को हम चालू कर रहे हैं। हाँ, ये यहाँ कर्मों में क्या क्या होता है उसका यहाँ वर्णन चल रहा है, ये तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, आगम से हम इसको जानते हैं, केवल ज्ञानियों ने जानकर बताया है, पर हमें क्या, वो तो मुनिराज तो अपने आत्मा में नहीं, उनको तो ये तो ये क्या क्रमकरण हो रहा है कि देशघातीकरण, और उससे उनको क्या है, वो तो अपने आत्मा के अनुभव में लीन है, उनको इसका नॉलेज है, जो उन्होंने आगम पढ़ा होगा उससे नॉलेज होगा, पर जिस समय वो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, जिस समय करण मांडा है, उस समय तो ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है कुछ नहीं है उसके मुँह, ऐसे विकल्प भी नहीं है, वो निर्विकल्प भूमिका में है, वो विकल्पात्मक नहीं। आज सुबह जो बात आई थी ना प्रवचन में गुजर के, वह कोई विकल्पात्मक या अनुमानात्मक की ऐसी बात नहीं हुआ है, वहाँ तो डायरेक्ट वो आत्मा उनके ज्ञान का विषय हो रहा है और निर्विकल्प अनुभूति चल रही है। तो ये जो हम जान रहे हैं वो हम आगम के द्वारा जान रहे हैं, जब वो उस पोजिशन पर पहुँच गए तो ये ऐसी बातें होती है, ये हमारे ज्ञान का विषय है। सहज कोई भी जीव जो सविकल्प है, उसने अपने आत्मा सन्मुख परिणाम किए, यानी अभी तक तो विकल्पात्मक था, विकल्पात्मक भूमिका तो निर्णयात्मक पहुंचने के लिए थे, विकल्प की क्यों जरूरत पड़ी, द्रव्य कैसा है उसको निश्चित करने के लिए, तो अभी विकल्पों की क्या जरूरत है करने की, नहीं समझे, निर्णय हो चुका ना, निर्णय हो चुका तो अभी विकल्प क्यों कर रहे हो, यानी विकल्प उठाने से ध्यान की कोशिश की जा रही है, नहीं समझे, ध्यान के नाम पर जल्प और विकल्प चल रहे हैं, जल्प यानी जो हम भाषा पढ़ रहे हैं वही हम मन ही मन में वो दोहराते हैं, वो जल्प कहलाते हैं, अंतर जल्प, ये बहिर्जल्प और ये अंतर जल्प, अगर जोर से आप करो ये मैं इससे भी नहीं, मैं उससे भी नहीं, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, अरे बताने की क्या जरूरत है, अभी आम का सीजन चल रहा है तो हापुस आम ला कर टेबल पर रखते हैं ना हम, फिर क्या करते हैं, अरे कितना सुंदर है, कितना पीला है, कितना मधुर है, क्या करते हैं अच्छी तरह सीधा अनुभव करते हैं, और यहाँ सीधे अनुभव की बात आती है
तो कहते कैसा करना है ना, हर एक का प्रश्न ऐसा है। होता तो सहज है, ये ज्ञान के द्वारा अपने स्वभाव जो है उसको, स्वभाव को ही जानते हैं। स्वभाव कहाँ पड़ा है, अपने प्रदेशों के बाहर है कि प्रदेश जहाँ पर्याय है वहाँ पर स्वभाव है कि कहीं दूर है, क्योंकि स्वभाव ये पर्याय व्यक्त अवस्था है, उसके पीछे पूरा स्वभाव है ना, प्रत्येक पर्याय के पीछे परिपूर्ण स्वभाव पड़ा है। और हम पर्याय जितना अपने को देख रहे हैं तो स्वभाव दिख नहीं रहा। गुरुदेव कहते ना उसके आड़ में ढक गया है। सामने बड़ा पर्वत हो या समुद्र हो और यहाँ हमने एक उंगली रख दी तो क्या दिख रहा है, उंगली दिख रही है। गुरुदेव के प्रवचन में कितना क्लियर हो रहा है, मुझे तो इतना प्रमोद आता है कि गुरुदेव ने कितनी बातें सरल करके समझाई। अभी सुबह जो आ रहे हैं योग सर के प्रवचन और इन चार तो बहुत अच्छे है, उसमें तो कितनी बातें क्लियर हो रही है। ये जो हमारे प्रश्न है उसके एक एक का उत्तर उसमें आ रहा है। यानी द्रव्यान योग के लिए ये प्रश्न उठते हैं, कोई भी शास्त्र का प्रवचन निकाल के सुनो आप, उसमें सभी उत्तर आ जाते। अब उसके सीडी रहे, उसकी जो डीवीडी रहे, अभी उसकी पुस्तक है, जिसको जो मार्ग जो चाहे, कोई पुस्तक पसंद करता है, कोई सीडी सुनना पसंद करता है, जिसको जो चाहिए। अपना उपयोग किस में लगता है हम स्वयं निश्चित करें, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। हम क्या कर रहे हो, हमें तो अपना कल्याण करना है, वो कर लिया। बस इतना ही निर्णय होना चाहिए सही, और फिर वो बस उसको कोशिश करना। और क्या है, शब्दों में कैसे किसको कौन क्या बताए। देखो अभी हम ये बात अपनी देशघातीकरण की चल रही है, पेज नंबर 171 239 और 240 की जो टीका है उसको हम कहेंगे। क्रमकरण कहकर अब देशघातीकरण कहते हैं। ये देशघातीकरण यानी कुछ तो अभी वो घाती संबंधी यहाँ कोई चर्चा होगी। देखो जो कर्म होते हैं तो कर्म आठ प्रकार के हमने नाम सुने होंगे, आठ प्रकृतियाँ होती है, नाम मालूम है, हाँ मालूम है, बोलो बोलो, हाँ बोलो। देखो घाती कर्म और अघाती कर्म दो भेद है। घाती कर्मों के भेद कौन कौन से है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। और अघाती कर्म वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। ये बात तो ये घाती जो है उसमें दो प्रकार होते हैं। घाती कर्म की बात करें प्रकृतियाँ, ये मूल प्रकृति को देखे हमने चार, अब उसके हर एक के उत्तर प्रकृतियाँ ने भेद होते हैं। जैसे ज्ञानावरण पांच प्रकार का है, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनोपरे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। जो दर्शनावरण कर्म है वो भी कैसे है, वो स्थान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा प्रचला, फिर चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, ये उसके भेद। मोहनीय के दो भेद है, दर्शन मोहनीय और चालित मोहनीय। दर्शन मोहनीय में हमने देखा बंधने वाला तो एक मिथ्यात्व है और बाद में तैयार होने वाले समय मिथ्यात्व, समय प्रकृति। चारित्र मोहनीय में 16 तो कषाय और 9 कषाय, 25 होते हैं टोटल, कषाय 25 होते हैं, वो मिथ्यात्व वो तो हमने देख लिया है दर्शन मोहनीय। अंतराय के तो 5 भी है। ये सब घाती के भेद हुए। अब ये जो घाती के भेद हुए प्रकृतियों के, इन प्रकृतियों में कुछ प्रकृतियाँ सर्वघाती है और कुछ प्रकृतियाँ देशघाती। अभी आपको गौर करना है, कभी मैं प्रकृति कहूँगी, कभी मैं स्पर्धा कहूँगी। अभी मैं प्रकृतियों की बात कर रही हूँ। कुछ प्रकृतियाँ कैसी है, सर्वघाती है। जैसे ज्ञानावरण के 5 भेद है, उसमें केवल ज्ञानावरण प्रकृति कैसी है तो सर्वघाती है। सर्वघाती के अपना प्रतिपक्ष का पूरा घात करती है। ये निमित्त की भाषा है, व्यवहार का कथन है। वहाँ कोई किसी का घात नहीं करता है, ना द्रव्य का घात हुआ है, ना गुण का हुआ है, ना पर्याय का हुआ है। द्रव्य में जो सामर्थ्य है वो पर्याय में प्रकट नहीं हो रही है जीव के अपने अपराध के कारण, तो हम कहेंगे वो केवल ज्ञानावरण के कारण इसका केवल ज्ञान पूरा घात हो गया। ये कथन पद्धति है, एक कथन पद्धति ख्याल में रखकर ये कथन बराबर उसको अर्थ ले लेना। तो केवल ज्ञानावरण, प्रत्येक प्रकृति का अपना अपना प्रतिपक्ष कौन सा गुण है, केवल ज्ञानावरण किसमें लागू होगा, उसका प्रतिपक्षी कौन है, केवल ज्ञान। क्या केवल ज्ञानावरण कर्म मति ज्ञान को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। ख्याल में आई बात? तो केवल ज्ञानावरण प्रतिपक्ष किसका हो, केवल ज्ञान, उसका कार्य उसका निमित्त बना केवल ज्ञान के साथ। तो केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है तो केवल ज्ञान थोड़ा सा प्रकट होता होगा कि नहीं? वो सर्वघाती है। अब मति ज्ञानावरण का, शुद्ध ज्ञानावरण का हम आपका उदय चल रहा है, फिर भी हमारा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान थोड़ा प्रकट है कि नहीं है? ख्याल में आती है? पूरा रख नहीं गया है, किसी का भी नहीं रखता, किसी भी जीव का, निबोध का भी जीव क्यों ना हो, उसका अल्प मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो प्रकट है ही, कुछ ना कुछ अंश तो ज्ञान दर्शन का तो प्रकट होता ही है। तो वही जो अवस्था है उसको क्या कहेंगे? क्षौषम। उसमें क्या होता है, ये जो प्रकृतियाँ कौन सी है, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन परे ज्ञानावरण, ये जो कर्म है वो देशघाती कर्म है। प्रकृतियाँ, प्रकृतियाँ कैसी है? देशघाती है। देशघाती है ना, क्या उसका उदय भी हो और वो जीव का गुण भी प्रकट हो, ये हो सकता है? यानी हमारा मति ज्ञानावरण का उदय भी चल रहा है और हमारा मति ज्ञान भी है, हमारा शुद्ध ज्ञानावरण का उदय भी चल रहा है, हमको शुद्ध ज्ञान भी है। तो आपका अवधि ज्ञानावरण का भी उदय चल रहा है, आपको अवधि ज्ञानावरण है क्या, अवधि ज्ञान है क्या? नहीं है। तो वो देशघाती है ना? है। परंतु देशघाती प्रकृति होने पर भी सभी देशघाती प्रकृतियों में स्पर्धक दो प्रकार के, स्पर्धक का अर्थ हमने क्या देखा था, परमाणु को वर्ग कहते हैं, समान अविभाग वाले वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं, एक एक अविभाग से बढ़ते हुए अनंत वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं, एक स्पर्धक दूसरा स्पर्धक तीसरा स्पर्धक ऐसे नीचे से ऊपर, ये स्पर्धक यानी अनुभाग बताने वाले अनंत स्पर्धक पाए जाते हैं। ये अनंत स्पर्धक हमें चार नामों से उसको बताते हैं, ज्ञानावरण में लता, दारू, अस्थि और शय, ये चार नाम हमने देखे। तो इसमें सर्वघाती और देशघाती का विभाग कैसा कहना, तो ऊपर के ऊपर चलेगी तो पूरे शैल भाग वाले, अस्थि भाग वाले और जो दारू भाग वाले जो अनंत स्पर्धक है उसमें अनंत भाग देशघाती है और अनंत बहुभाग सर्वघाती, यानी दूसरी भाषा में शैल भाग वाले है, अस्थि भाग वाले है और दारू के अनंत बहुभाग वाले जो स्पर्धक है वो सर्वघाती स्पर्धक है, और दारू का अनंत भाग और लता भाग वाले वो देशघाती स्पर्धक है। तो देशघाती प्रकृतियां हैं कौन सी? अम्मा ज्ञानावरण के बारे में केवल बात करेंगे, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, मनपर अवधि ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण, ये प्रकृतियां कैसी है? देशघाती। उसमें स्पर्धक कैसे है? सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। बनते ऐसे ही सभी ये देशघाती प्रकृतियां हैं, उसमें सर्वघाती और देशघाती दोनों टाइप के स्पर्धक है। अब जो केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है उसमें स्पर्धक कैसे टाइप के हैं? सारे ही सर्वघाती है, यानी उसका कितना भी मंद क्यों ना हो वो पूरा ही घात करेगा। केवल ज्ञानावरण कितना भी मंद क्यों ना हो वो थोड़ा सा केवल ज्ञान नहीं प्रकट करा सकता, वो पूरा ही घात करेगा। उसको कहेंगे सर्वघाती प्रकृति और उसके स्पर्धक भी सर्वघाती है। मति ज्ञानावरण की अकेले की बात करते हैं, मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, उसमें स्पर्धक कैसे होंगे? दोनों सर्वघाती भी देशघाती। मान लो मति ज्ञानावरण के सर्वघाती का उदय हो जाता तो क्या होता? जीव जड़ हो जाता। तो ऐसे कौन से जीव है कि जिसको मति ज्ञान बिल्कुल नहीं है, यानी केवल ज्ञान की बात नहीं, जो सूक्ष्म ज्ञानी है उसमें बिल्कुल मति ज्ञान है ही नहीं, ऐसे कौन से जीव है? कोई नहीं। निबोध भी जीव कुछ ना कुछ ज्ञान का अंश है, उसका प्रकट है। तो उनके सर्वघाती का क्या होता है? सर्वघाती का उदय नहीं होता। जब बंधे थे तो सर्वघाती देशघाती दोनों बंधे थे। जब निषेक रचना हुई है प्रत्येक निषेक में सर्वघाती देशघाती पड़े हैं। अब जैसे हमने जीव संक्रमण में देखा था ऐसे अभी उदय का समय आ गया तो वो सर्वघाती वो देशघाती रूप होकर टर्न होकर उदय में आया। देशघाती सर्वघाती रूप से कभी उदय नहीं होगा। किसमें? मति शुद्ध ज्ञानावरण।
पर अवधि ज्ञानावरण में हो सकता है।
अवधि ज्ञान ज्ञानावरण का सर्वघाती का उदय हो जाए तो जीव का अवधि ज्ञान नहीं है, जीव हमको नहीं है।
वो थोड़ी डिटेल बात में, उसके अपेक्षा से वो देशभक्ति वाला ही अधिक पर, यानी उसके भी अनेक भेद हो गए ना, जिसका उदय है उसकी अपेक्षा से उसको उसका घात, यानी उसका एक एक नाम लेकर के, जैसे इनका ये कहना है हम जर्मन भाषा नहीं जानते हैं तो उस जर्मन भाषा वर्ण का वो तो पूरा उदय है, वो तो पूरा घात कर रहे हैं, वो हम उससे संबंधित ज्ञान नहीं है उसका, इस तरह से उसको कर, यानी वो विषय के अनुसार उसका अनेक भेद करेंगे, जितने विषय उतने वो ज्ञानावरण के भेद, उसकी चर्चा नहीं करें हम, तो सामान्य रूप से देख रहे हैं यहाँ पर। जैसे अवधि ज्ञानावरण प्रकृति देशघाती है, उसमें स्पर्धक सर्वघाती भी है और देशघाती भी है, तो जिसको अवधि ज्ञान नहीं है उसके सर्वघाती का उदय चल रहा है, और जिसको अवधि ज्ञान प्रकट है उसके देशघाती का उदय चल रहा है। वो देशघाती में भी कितनी रेंज है अभी अलग अलग, उसमें भी किसी का आवरण है किसी का आवरण नहीं, इस तरह से वो अवधि ज्ञान आवरण की जितने भेद है उतने अवधि ज्ञान के भी भेद वहाँ पाए जाएंगे। तो यहाँ सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक ये सभी कर्मों में पाए जाते हैं। कौन कौन से? ज्ञान आवरण के चार। जो सर्वघाती प्रकृतियाँ हैं उसमें सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं। अब सर्वघाती की पहले हम देखते हैं लिस्ट, पांच ज्ञानावरण में सर्वघाती कौन सी है? केवल ज्ञान। दर्शनावरण के नौ भेद है, उसमें कौन कौन से सर्वघाती है? अकेले केवल दर्शनावरण, पांचों निद्रा, कौन सी? ज्ञान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा प्रचला, किसका घात करती है? हाँ, अपने प्रतिपक्ष। निद्रा का प्रतिपक्षी क्या है? जागृत अवस्था, यानी वो कभी उदय रूप होती है कभी अनुदय रूप होती है। जब उदय रूप है तब निद्रा है, और जब अनुदय रूप है तो जागृत अवस्था है, ऐसी उसकी पोजीशन। पर उसको सर्वघाती प्रकृति दे दिया है, यानी उसके प्रतिपक्ष का पूरा घात कर, बाकी तीन जो हो तो देशघाती होती। अब मोहनी की बातें, मिथ्या तो कैसा है, देशघाती है या सर्वघाती? सर्वघाती, पूरा ही घात, कितना भी सूक्ष्म क्यों ना, अनिवृत्ति के अंत समय में भी मिथ्या है तो भी मिथ्या तो गुणस्थान कर, कितना भी मंद क्यों ना हो वो भी सर्वघाती। अब वो बंधने वाली तो समय प्रकृति वगैरह जो है, समय मिथ्यात्व है वो भी सर्वघाती, और समय प्रकृति वो देशघाती, क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय भी होता है और जीव का सम्यक्त्व भी बना रहता है, जिसको हम सूक्ष्म सम्यक्त्व कहते हैं। इसकी एक सूक्ष्म रूप अवस्था है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सत्ता में पड़े रहते हैं और सम्यक प्रकृति का उदय रहता है, ये सम्यक्त्व की सूक्ष्म रूप अवस्था है। ये जो सर्वघाती का सत्ता में बना रहना, उदय में नहीं आना और देशघाती का उदय होना, ये जो अवस्था होती है उसका नाम ही सूक्ष्म है। ऐसा सूक्ष्म ये देशघाती प्रकृतियों में ही बन सकता है, सर्वघाती में नहीं होता, ना केवल ज्ञानावरण का कुछ सूक्ष्म होगा, ना केवल दर्शनावरण का निद्राओं का भी सूक्ष्म नहीं होगा। सूक्ष्म किसका हो सकता है? देशघाती प्रकृतियों का। क्यों? उसमें सर्वघाती और देशघाती डिफरेंसेस। तो सूक्ष्म की परिभाषा याद है किसी को? देखो ये कह रहे हैं, हाँ बरूबर है, वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उदयाभावी क्षय का वो अपने रूप से उदय में नहीं आ रहे फिर भी खिल रहे, वो देशघाती रूप होकर खिलेंगे, अपने रूप से उदय में नहीं आना वही उनका उदय का अभाव रूप क्षय। भविष्य काल में वो पड़े कि नहीं पड़े? हाँ, भविष्यकालीन उन्हीं का, यानी उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप क्षय, सदवस्था रूप क्षण है कि उदय में नहीं रहे पर सत्ता में तो सर्वत्र पड़े, बंदे भी है और सत्ता में भी है, उदय में नहीं आ रहे, तो उदय किसका है? देशघाती स्पर्धकों का उदय। ऐसी जो अवस्था है इसका नाम ही है क्षोक्षम। आपने तो क्षोक्षम भाव घटे हो घटित किए होंगे, पांच भाव रटे मान्य, कितने होते हैं क्षोक्षम भाव? बोलो कितने होते, बोलो अठारह के मान, देखो आसान तरीका मैं बता, आपको चार घाती कर्म मालूम है? ज्ञानावरण के क्षोभ किसमें किसमें? चार ज्ञानों में होते हैं, तो चार शुद्ध ज्ञान हो गए और तीन मिथ्या ज्ञान हो गए। अब दर्शनावरण में देशघाती प्रकृतियाँ कौन सी है? तीन। तो तीन दर्शन है वो अपने क्षोभ रूप हो जाएगा। मोहनीय में क्षोभ सम्यक दर्शन, क्षोभ सम्य दर्शन है, संयम संयम है, और देश चारित्र क्षोभ चारित्र जो छठी जाते गुण स्थान है। अब अंतराय के पांचों है वो सबका क्षोभ होता है, तो हो गए ना सब अठारह भाव, सब देशघाती पर ही घटित हो गए। तो यहाँ क्या हो रहा है, देशघाती करण का अर्थ क्या है? अभी तक जो अनुभाग बंद होता था, मति ज्ञानावरण वगैरह बनती थी ना, यहाँ मति ज्ञानावरण थी, पांचों बंद रहे कि नहीं बंद रहे? हमने बनने वाली प्रकृतियों के नाम देखे थे, फिर से जरा याद करो, ज्ञानावरण कितनी बन रहे यहाँ पर? नौवा गुण स्थान चल रहा है, ज्ञानावरण पांच बन रहे। दर्शनावरण कितने बन रहे हैं? निद्रा प्रचला की बंद विच्छित्ति हो गई, आठवें के पहले भाग में निद्रा प्रचला बंद से रुक गए, अभी दर्शनावरण चार ही बन रहे। और कौन बन रहे हैं? मोहनीय कितना बन रहा है? नवे गुण स्थान के लास्ट में आए, अंत में आए ना, अभी अंत संख्या का भाग शेष है। अभी मोहनीय क्या क्या बन रहा है? पुरुष वेद बन रहा है, संयोजन चार बन रहे हैं, हास्यरति बन रहा है क्या? इसीलिए मैंने पूछा, हास्यरति भैजरूपसा बन रहे नहीं बन रहे, क्या बन रहा है यहाँ पर? संयोजन चार और एक पुरुष वेद बन रहा है, वो बन रहे हैं, बात सही ना? क्या क्या बन रहा है उसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अंतराय बन रहे कि नहीं बन रहे? पांचों अंतराय बन रहे। अब वो साता वेदनी बन रहा है, यश कीर्ति बन रहा है, उच्च गोत्र बन रहा है, वो तो आयु तो नहीं बन रही, ये तो बात सही है। अब यहाँ हम ये जो बनने वाली प्रकृतियाँ है उसमें देशघाती प्रकृतियाँ बन रही है कि नहीं? ज्ञानावरण में चार प्रकृतियाँ तो देशघाती है, दर्शनावरण की तीन प्रकृतियाँ देशघाती है, अब यहाँ बनने वाला संजवलन वो भी देशघाती है, और अंतराय भी देशघाती प्रकृतियाँ, तो उसमें सर्वघाती देशघाती ऐसे स्पर्धक है कि नहीं? मेरा प्रश्न, मोनी को छोड़ दो उसकी बात बाद में करेंगे, पर इन सभी में सर्वघाती भी और देशघाती भी बंद हो रहा था अभी तक। अभी तक बंद कैसा हो रहा था? सर्वघाती देशघाती। सर्वघाती में क्या लेना है उसका? क्योंकि भले वो शैल अस्थि वाला नहीं भी बन रहा हो, पर दारू का बहुभाग तो बन रहा है ना, क्योंकि हमने देखा था ना अप्रशस्तों का अनुभाग भी द्विस्थानगत होता है, द्विस्थानगत में वो दारू वाला सर्वघाती तो बन ही रहा था। अब यहाँ पर आके क्या हो जाएगा कि उसका देशघाती का बंद होगा, सर्वघाती का बंद रुक जाएगा, ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। इतनी मेहनत क्यों की सर्वघाती? अब यहाँ का बंद हो जाएगा वो देशघाती, तो केवल ज्ञानावरण कर्म देशघाती रूप से बंधेगा कि नहीं बंधेगा? वो सर्वघाती ही है, स्पर्धक ही नहीं, उसमें होगे भी नहीं, तो उसका मंद भले अनुभव होगा पर वो सर्वघाती रूप से ही होगा, तो उसको यहाँ नहीं गिनेंगे, क्योंकि देशघाती प्रकृतियों में भी सर्व उसी में सर्वघाती बनते हैं, सर्वघाती में तो सारे सर्वघाती ही, उसमें देशघाती का सवाल ही नहीं है। तो देशघाती करण जो कह रहे हैं यहाँ के जो अभी बंधने वाले स्पर्धक, वो सर्वघाती रूप से उनके नहीं बंधे, जिसमें पहले सर्वघाती और देशघाती दोनों का बंध हो रहा था वो अभी केवल देशघाती रूप से बंधे के लिए उसका अर्थ है। अभी इसको पढ़ेंगे। हाँ देखो पेज नंबर 170 है, क्रमकरण कहकर अब देशघाती करण कहते हैं। वहाँ पहले प्रकृतियों का सर्वघाती स्पर्धरूप अनुभाग बांधा था, पहले देश से पूर्व अवस्था इसके पहले, अब देशघाती करण से लेकर दारू लता समान द्विस्थान कर देशघाती स्पर्धक रूप ही अनुभाग को बांधता है।
पहले भले बीस स्थान रखता परंतु उसमें भी सर्वघाती तो बन गए। अब यहाँ वो केवल वो दारू का आनंद हुआ भाग वाला और लता भाग वाला ऐसे देशघाती स्पर्धक ही बन लेंगे। यहाँ का जो बंध होगा वो ऐसा बंध होगा, यानी यहाँ का अनुभाग बंध ऐसा हीन होकर बंधेगा। देशघाती प्रकृतियों में केवल देशघाती स्पर्धक यहाँ बंधेंगे, सत्ता में पड़े हैं अभी, अभी यहाँ का बंध की बात चल रही है। वहाँ असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण उदीर्णा का प्रारंभ होने के पश्चात, ये असंख्यात समय प्रबद्ध की उदीर्णा कब प्रारंभ होती है? क्रमकरण के अंतर हमने पढ़ा था ना, तो उसके पश्चात संख्या हजार स्थितिबंधापसरण होने पर, यानी वो संख्या हजार उसकी गाड़ी यहाँ पर भी चल रही है, तो क्रमकरण के पश्चात संख्या हजार स्थितिबंधापसरण होने के बाद सबसे पहले मन पर ये ज्ञानावरण और दानांदराय का देशघाती बंध होता है। उसमें भी क्रम है, किसका देशघाती पहले होगा किसका बाद में होगा, वो क्रम से हो रहा है। वैसे तो पांचों ज्ञानावरण तो बंधे रह गए, परंतु ये जो चार ज्ञानावरण किस रूप से बंध रहे, तो देशघाती रूप से। अभी तक सर्वघाती देशघाती दोनों का बंध हो रहा है, अभी जो नया बंध यहाँ का हो रहा है वो देशघाती रूप से ही बंध रहे। सत्ता में भले पड़े होगा, सत्ता का भी अनुभव घट रहा है, परंतु अभी नया बंध की यहाँ बात है, इसको देशघातीकरण कहते हैं। उदीर्णा का अर्थ सत्ता में पड़े हुए द्रव्य जो है निषेक है, उसमें से कुछ परमाणु उदयावली में आते हैं, उसका नाम उदीर्णा है। आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है उदीर्णा के साथ और बंध के साथ? हाँ, असंख्या समय प्रबंधों की उदीर्णा कब हुई? क्रमकरण काल के लास्ट में। उसके बाद और भी संख्या हजार स्थिति बंधापसरण बीत गए, इतने अंतर्मुख बीत गए, तब जाके अब ये देशघातीकरण शुरू हुआ यहाँ से। हाँ, ये वो जो कार्य चल रहा था वो चल ही रहा है, तुरंत नहीं है, बीच में संख्या हजार स्थितिबंधापसरण वगैरह वो चल ही रहा है। वो स्थिति कांड का अनुभव कांड का जो जो हमने पढ़े थे वो सभी कार्य यहाँ चल रहे हैं, यानी नया कुछ कार्य नहीं हुआ है, जो पुराने हैं वो तो सब चल ही रहे। अब यहाँ पहले में पहले देशघाती किसका होता है? मन पर ज्ञानावरण और दानांतराय का देशघाती बंद होता है। उसके पश्चात उतने उतने ही स्थिति बंधापसरण होने पर, देखो हर बार संख्या हजार स्थिति बंधापसरण की बात होती है, यानी कितने अंतर होती है, नौवे गुणस्थान के अंदर हो गया, आप इमेजिन कर सकते हैं। और नौवे गुणस्थान का अंतर मूल्य भी कितना छोटा है, अपने अपने कैच में अपने ख्याल में भी नहीं आवेगी इतना। तो ये समय कितना सूक्ष्म, अंतर मूल्य इतना सूक्ष्म है तो समय कितना सूक्ष्म होगा, ख्याल में आती है। और ये श्रेणी चढ़ के उतरने का पूरा कार्य बिल्कुल कुछ सेकंड या फ्रैक्शन का है, यानी इतने में इतनी सब बातें होती हैं, समझ नहीं पा रहे वो कितना आसान है करना, वो समझो ना ज्यादा। अभी क्या किसी ने मुझे प्रश्न पूछा, किसी ने मुझे याद भी नहीं है कि कुंदकुंदाचार्य ने श्रेणी क्यों नहीं छोड़ी, किसका क्या प्रश्न था, कोई भाई का था क्या, किसी ने पूछा, रिपीट करना जरा। हाँ, क्या बोलो बोलो, क्यों नहीं चढ़ी, क्या चढ़ी चढ़ी और छोड़ गई, क्या हुआ, तो पंचम कांड में क्यों नहीं चढ़ी, उसमें क्या होता है? हमने देखा कि उत्तम सहन के साथ श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ होगा, अब इस काल में ऐसे सहन वाले जन्म नहीं लेंगे, ये निमित्त रूप से हम उसको, यहाँ के जीवों की ऐसी पात्रता नहीं है उसका मूल कारण, इतनी उनकी पुरुषार्थ नहीं होता है कि इतनी वो स्थिरता हो सके, तो उसको निमित्त रूप से हम कहेंगे वहाँ ऐसा उत्तीर्ण सहन वाले होते हैं, इस आदमी जी असही अनंतानुबंधी की विषय योजना सातवें नरक का नारकी भी कर सकता है, चौथे गुणस्थान वाला भी वो तो कर सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। हाँ, अपना विषय यहाँ चल रहा था 171 पेज। पहले में पहले मन परे ज्ञानावरण और दानांतरा का देशघाती बंद होता है, उसके पश्चात उतने उतने ही स्थिति बंधाक्षरण होने पर क्रम से अवधि ज्ञानावरण, अवधि दर्शनावरण और लाभांतराय का उनका देशघाती बंद होता है, ये पूरा वाक्य। उसके बाद अभी हर बार वो ऐसा समझना, बीच में संख्या हजार स्थिति बंधाक्षरण होने के बाद फिर शुद्ध ज्ञानावरण, अचक्ष दर्शनावरण और भोगांतराय का, तीनों का सब, फिर संख्या हजार स्थिति बंधाक्षरण होने पर ही बीच में पढ़ लेना चक्षु दर्शनावरण का अर्ध विराम दिया ना, तो उसके बाद फिर संख्या हजार स्थिति बंधाक्षरण होने के बाद मति ज्ञानावरण उपभोगांतराय का, और उतने ही हो जाने पर वीर्यांतराय का देशघाती बंद होता है। ये सबका क्रम से लिया, तो इसमें हमने ज्ञानावरण के भेद देखे, दर्शनावरण के लिए और अंतराय के लिए। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहे, देखो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, संज्वलन चतुष्क और पुरुष वेद यहाँ बन रहे ना, मुनि की पांच प्रकृतियां बन रही है, उसका देशघातीकरण यहाँ क्यों नहीं कहा, ये प्रश्न, क्योंकि वो भी देशघाती प्रकृति है, उसमें भी सर्वघाती देशघाती तो होते ही होंगे कि नहीं, तो उसका देशघातीकरण क्यों नहीं हुआ, ये यहाँ का प्रश्न है, उसका समाधान। उनका अनुभाग बंध संयमा संयम के ग्रहण के समय से लेकर प्रति समय अनंत गुणा घटते क्रम से, प्रति समय अनंत गुणा घटते हुए द्विस्थानगत होता है, इसलिए यहाँ नहीं कहा, तथा उनका सत्तारूप अनुभाग सर्वघाती ही है। देखा ना, सत्ता में तो सर्वघाती पड़े हैं, सर्वघाती देशघाती सत्ता में पड़े हैं, यहाँ नया बंध की बात हो रही है, जो देशघातीकरण हुआ है यहाँ बनने वाले नए कर्मों की बात है। तो संज्वलन का क्यों नहीं किया, उसका तो पांच गुणस्थान से ही हो गया, वहां से उसका देशघाती रूप से बंध शुरू हुआ, ये उनको मोहनीय कर्म का देशघातीकरण पांचवें गुणस्थान में ही हो जाता है, वहां का जो बंध है वो द्विस्थानगत और कम अनुभाग वाला वहां से ही शुरू हो जाता है, ये इनका कहना है। संज्वलन प्रकृति देशघाती है, और देशघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक भी और देशघाती स्पर्धक भी, हाँ ऐसा ही है। हम आपको संज्वलन प्रकृति का उदय है कि नहीं है, है नहीं है, है कैसा है, सर्वघाती का भाग कर रहे हैं ना पूरा, वो तो अनंतानुबंधी जैसा कार्य कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि को हम कहते हैं हमें अनंतानुबंधी का उदय है, वो अनंतानुबंधी सम्यक तो नहीं होने देता, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में अनंतानुबंधी हो, अप्रत्याख्यान हो, प्रत्याख्यान हो, संज्वलन हो, वो अनंतानुबंधी जैसा कार्य कर रहे, सम्यक तो नहीं होने दे, संयम की बात तो बहुत आ गई। चौथे गुणस्थान में तीन कषाय टोकरी है, पर वहाँ के तीनों कषाय कौन से, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, तीनों ही क्या काम कर रहे हैं, वो अनुव्रत वगैरह नहीं होते। पांचवें गुणस्थान में प्रत्याख्यान और संज्वलन का उदय है, वो दोनों ही प्रत्याख्यान जैसा कार्य कर रहे हैं। अब जो मुनिराज है उनको केवल संज्वलन का उदय, तो वहां पर वो संज्वलन का भी कैसा, वो तो देशघाती का ही उदय चल रहा है, तो उनका संज्वलन भी होता रहे और उनका संयम भी बना रहे, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो नीचे के गुण हमारे आपको भी संज्वलन वगैरह का उदय है, उसके तीव्र अनुभव का उदय चल रहा है, देश सर्वभारती रूप से उसका उदय चल रहा है, ख्याल में है। देखो मोनिय में जो है, हमने जो सर्वघाती देशघाती की बात की थी, अनंतानुबंधी सर्वघाती है, अप्रत्याख्यानावरण सर्वघाती है, प्रत्याख्यानावरण सर्वघाती है, प्रकृतिया संज्वलन देशघाती है, नव नवकषाय देशघाती, इस तरह से उसका
जो सर्वघाती उसके उदय है स्पर्धक का,
संस्मरण जहाँ सर्वघाती का कार्य चल रहा है वो देशघाती के नहीं के बराबर है ना, जिसका उस रूप से उदय कह रहा है ना, उसमें कोई बात नहीं है। जहाँ सर्वघाती के सामने देशघाती क्या कर रहा है, सर्वघाती का कार्य हो रहा है ना, वहाँ उदय उसका कहलाए। देशघाती भले जा रहे हैं परमात्मा के, उसका उदय तो सर्वघाती का ही वहाँ फल मिलेगा। कौन सा संतों वो तो भी सर्वघा तो अलग से उसका संक्रमण नहीं होता, क्योंकि वो सर्वघाती का कार्य चल ही रहा है। वह जो उत्कृष्ट स्पर्धक पाए जाते हैं उसके सामने वो जघन्य स्पर्धक क्या कार्य करे। देखो क्या क्या फिर से प्रश्न, हमारे जो आचार्य हुए
हाँ कैसे होगा,
कौन सा समय को है। अच्छा क्यों क्यों समय को ले जाए, वेदक समय को जिसको कहेंगे, क्योंकि औक्षविक समय को जो पहली बार समय को होकर वो चढ़ेंगे, जो मिथ्यातों में से चढ़ेंगे उसको औक्षविक कहेंगे हम। अभी वो पंचम काल के है तो जन्म से तो कोई समय दृष्टि नहीं, परंतु उसमें कोई सारी समय दृष्टि सारी भी मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, तो उनके वेदक समय को डायरेक्ट भी हो सकता है। हो सकता है किसी ने प्रथम उपशम प्राप्त करके बाद में वेदक हुए हो, वो भी हो सकता है। किसका क्या हुआ वो तो केवल ज्ञान गम्य या अवधि ज्ञान गम्य बात है। शायद समय तो इस काल में नहीं होता। अभी कुंकुलाचार्य के बारे में ऐसे कहते, वो तो केवली के बाद में साक्षात कीर्तन के पास गए थे तो उनको शायद हुआ क्या नहीं हुआ, हाँ तो हम कैसे कहेंगे हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उसके सामने जाने वाले सबको होता ही ऐसा थोड़ा ही है। ख्याल में आया नहीं वो कैसा हुआ, उनका सम्यक तो था ये तो नक्की है कि नहीं। महिराज थे बावली ही संत थे और उन्होंने इतनी दृढ़ता से सभी बातें बताई, और उनका कुनकुंदाचार्य का षटखंडागम का बहुत अभ्यास था। धौला में बार बार उनके परिकर्म ग्रंथ की चर्चा आती है। उन्होंने टीका लिखी थी जिसका नाम था परिकर्म, जो हमारे दुर्भाग्य से अवेलेबल नहीं है। ये धौला वगैरह बाद में बनी, धौलाकारों के लिए वो परिकर्म ग्रंथ अवेलेबल था उनके सामने। क्यों सिंगल कर रही, कितनी बार वो परिक्रम का नाम लेते हैं उसमें, कितनी गाथा है उसमें से उद्धृत करते हैं। क्योंकि वीरसेन स्वामी के सामने वो कुनकुंदाचार्य के ग्रंथ मौजूद थे परिक्रम नाम के, हमें वो अवेलेबल थे। वही तो कहे थे सर कुनकुंदाचार्य तो होने चाहिए ना, वो तो केवली के पास जाके आए है, परंतु वो थे के नहीं वो कौन कहेंगे, और हमें क्या अधिकार है वो है या नहीं है कहेंगे। शायद समय दृष्टि के लिए सहन की जरूरत नहीं। हाँ एक प्रश्न और मुझे आया, किसी ने पूछा था कि क्या नरक से लेकर डायरेक्ट यहाँ कोई तीर्थंकर हो सकता है, हाँ? आपने पूछा था, किसने पूछा था, अरे जो यहाँ तीर्थंकर प्रकृति बांध कर नरक में गया है, जैसे श्रेणिक राजा, श्रेणिक राजा पहले नरक में क्यों गया, नरकायु बांधी, कब बांधी, समय दर्शन होने के बाद के पहले, क्योंकि पहले गुणस्थान में बंद की उचित होती है ना, वो पहले गुणस्थान में नरकायु बांधी, बाद में उनको समय दर्शन हो गया, इतना नहीं क्षायिक हो गया, इतना नहीं तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी किया, क्योंकि महावीर भगवान के समोचन में तो क्या केवली के आगे कर दिया। अब वो क्षायिक समय को तीर्थंकर प्रकृति बांधते हुए पहले नरक में गए, अब वहां से वो डायरेक्ट आकर उनके पंचकल्याणक सहित सब पहले तीर्थंकर होने वाले हैं। अब ऐसे ही जो जो क्षायिक लेकर और तीर्थंकर प्रकृति बांधते हुए क्षायिक के साथ जो गए वो पहले नरक में है, वो एक ही नहीं कितने ही हो गए। अब जो क्षायिक नहीं हुए हैं परंतु जो वेदक समय को पहले नरकायु बांधी, बाद में वेदक समय को प्राप्त किया, बाद में तीर्थंकर प्रकृति बांधी, परंतु अभी नरकायु बांधी तो नरक में जाना ही है, वो दूसरे और तीसरे नरक में जाते हैं, पर जाने के पहले अंतर्मुहूर्तक उनका मिथ्यात्व तो पुनस्थान आता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुकता है, वहाँ जाते ही शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते होते ही नीचे उनको समय तो भी हो जाता है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी बांधना शुरू करते हैं। तो दूसरे और तीसरे नरक में ऐसे असंख्यात जीव पड़े हैं जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं, वहाँ से आकर वो डायरेक्ट तीर्थंकर होने वाले हैं, पंच कल्याणक वाले भी हो गए उसमें, उनको अभी क्षायिक नहीं है वो क्षायिक स्वयं ही वो प्राप्त करेंगे, उनको अन्य केवली शुद्ध केवली की जरूरत नहीं है। सात सागर उत्कृष्ट नहीं, साधिक तीन सागर उत्कृष्ट कीर्तन, वहाँ के जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वालों की उत्कृष्ट वहाँ की जो स्थिति है वो साधिक तीन सागर होती है। भले तीसरे नरक की उत्कृष्ट आयु सात सागर है पर तो उनके नहीं होती, तीर्थंकर प्रकृति बांधने वालों के नहीं होती, ये नियम है। आपका ये प्रश्न है कल्प काल में 24, यहाँ तो 24 ही है और वहाँ तो असंख्यात कह रहे हैं, तो ये हाँ और पहले नरक में असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे, दूसरे नरक में असंख्यात जीव, तीसरे नरक में असंख्यात जीव, स्वधर्म से लेकर सर्वार सिद्धि में संख्यात जीव है, बाकी सभी देवों में असंख्यात असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे। आपका प्रश्न है यहाँ तो 24-24 होते हैं दस कोड़ा कोड़ी सागर में, आप अपने क्षेत्र की क्यों बात करते हैं, यहाँ ढाई क्षेत्र राहित द्वीप में कितने होंगे, और वो तो इतने सागरों की बात है। अब ये स्वधर्म इंद्र है, उसकी आयु कितनी है, दो सागर को सारी दो सागर को जितनी है, तो उसमें वो कितने पंचकल्याण अटेंड करता होगा, असंख्यात है कि नहीं, क्यों, क्योंकि दो सागर के आयु में कितने लोग और एक तीर्थंकर की उत्कृष्ट आयु कितनी हो सकती है, अभी विदेह क्षेत्र की देखो ना 1 करोड़ कुल, तो पल्ले के असंख्यात विभाग में ऐसे असंख्यात कुलों को भी चली जाएगी पल्ले में, तो सागरों में कितने जाएगी, तो एक स्वधर्म इंद्र कितने पंचकल्याण अटेंड करता होगा, असंख्यात, समझ में आते हैं ना। तो ये वहां से जो यहाँ से तीर्थंकर प्रकृति बांध कर जाने वाले जीव संख्या ही हो गए, कुछ काल के अंतर में वो जाते रहे क्योंकि बांधने वाले मनुष्य से ही गए हैं, पर वहां उनकी आयु इतनी बड़ी है सागरों की, तो उतने काल में अनेक वहां जीव वहां जिसको संचय होता गया, यानी वो जीव वहां बढ़ते गए और वहीं से कोई जीव निकलेंगे, विदेह क्षेत्र आदि में तो होते रहेंगे, हमारे यहाँ तो केवल उस सर्पिणी अवसर्पिणी में वो जो यहाँ चौथा काल होता है तब यहाँ होंगे, पर अन्य सर्वत्र तो हमेशा होते रहेंगे। ये अचरज लगता है असंख्या जीव तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे, हाँ बांध रहे, ये वस्तु सीखती है, और पहले नरक में शायद समय दृष्टि भी असंख्या, चूंकि दर्शन होने की क्षपणा करने वाले 6 महीने और 8 समय में 608 ही जीव होते हैं, क्या कहा, क्षपणा करने वाले भी 608 हैं, उसमें से जिन्होंने पहले नरकायु बांधी हुई गिने चुने थोड़े जाएंगे वहां पर, कोई भोगभूमि में जाएंगे जिन्होंने तिर्यंचायु मनुष्य बांधी, कोई देव में जाएंगे, तो वहां वो इतनी सागर की आयु है तो वहां उतने संचित होते होते असंख्यात हो जाते, उनकी संख्या असंख्यात कैसी होती है, एट ए टाइम तो असंख्यात गए नहीं है, वहां से कुछ निकलेंगे कुछ जाते रहेंगे तो उनकी संख्या असंख्यात बनी रहती है हमेशा, हमें आएगा मैक्सिमम 170 रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ अजित नाथ के काल में हुआ था वैसा कभी कभी हुआ, पर वहां तो हमेशा ही होंगे ना, मिनिमम तो 20 होते ही है और अन्यत्र एक्स्ट्रा भी होते रहेंगे तो ज्यादा संख्या होगी, 20 से लेकर 160 तक विदेह क्षेत्र में होते रहते हैं। 170 एक करोड़ पुरो के बाद दूसरे आएगी कि नहीं वहां पर, तो एक सागर में ऐसे करोड़ पुरो कितने होंगे, असंख्यात होंगे, इस तरह से असंख्यात होते नरकों से भी आएंगे स्वर्गों से भी आएंगे, ये लंबा काल है, हम सागर कहने से कितना लंबा काल, करोड़ पुरो भी गिनते जाओ तो आपके हमारे 5-10 साल 100 साल के सामने वो कितना बड़ा काल है, और यहाँ तो सागरों का काल है वो कितना लंबा काल है, असंख्यात वर्षों का, तो इतने काल में असंख्यात कितने कर हो जाते हैं। उदय की बात नहीं है, बंद की बात है,
वहाँ क्या लिखा, वो सर्वघाती रूप से ही पड़े, सत्ता रूप अनुभाग सर्वघाती ही है। हाँ, उनका वो प्रत्यक्षानावरण भी थोड़ा संबंध हो जाता है, परंतु वो है तो सर्वघाती प्रकृति। संकलन दोनों प्रकार के हैं, पर वो प्रत्याख्यान जैसे ही उसका कार्य होगा ना, पांचवे वाले को तो वैसा ही कार्य होगा, वो संयम नहीं होने देगा। अगर वहाँ अगर हम उसको देशघाती कहेंगे तो संयम होना चाहिए वहाँ। हाँ, वो बंद नया बंद है, वो तो देशघातीकरण वहाँ हुआ है, परंतु उदय तो सत्ता में पड़े हुए उसका है। हाँ, बंद वो वहाँ द्विस्थानगत की हुआ, और जहाँ द्विस्थानगत कहने की बात, तो वो देशघातीकरण वहाँ हुआ है, इसलिए कहेंगे वो संज्वलन का विशेषता कहेंगे, क्योंकि प्रत्यक्षानावरण है भी सर्वघाती प्रभु, हाँ उसमें द्विस्थानगत नहीं कहेंगे, मंद होगा उसका, वहाँ का संज्वलन की बात है। प्रत्याख्यान में उन्होंने प्रश्न तो संज्वलन के बारे में किया। हाँ, अब ये हो गया, अपना समय भी हो गया, कोई प्रश्न है तो पूछना है। ना, यह जो सौक्षम कहलाता है, जितनी हमारी व्यवहार रूप शक्ति है, भले उसमें उपयोग हो ना हो, उसका सौक्षम ही चल रहा है, क्योंकि ज्ञान की पूरी पर्याय जो है लब्धि उपयोग हो ज्ञान भवेंद्रिय, यानी शुद्ध ज्ञान की जो पर्याय है, जो सौक्षम ज्ञानी की पर्याय है, वो लब्धि यानी उसके सौक्षम रूप शक्ति और उपयोग, इनको मिलकर वो ज्ञान की पर्याय है। हम कहते हैं वो तीन ज्ञान के धारी है, चार ज्ञान के धारी, उसका अर्थ क्या है, उनका शोषण चल रहा है। हाँ, उदय हो रहा है, पर उसका उसमें उपयोग नहीं, उपयोग रूप अवस्था नहीं, पर शोषण तो चल रहा है। तभी तो हम कहेंगे ना ये चार ज्ञान के धारी है, तभी तो कह सकते हैं, नहीं तो उनको चार ज्ञान के धारी भी नहीं कह सकते, यानी न्याय से बात थोड़ा अंदाजा हो जाता है। इसमें किसी एक में अभी हमारा मति ज्ञान का शोषण चल रहा है, परंतु इंद्रियों के अपेक्षा किसी एक इंद्रिय के द्वारा जानने का कार्य चल रहा है, सब में ऐसे टाइम नहीं होगा, वो इतना फास्ट होता है, वो अंतर्मुख इतने छोटे हैं, हमें वो ऐसा नहीं था, हम तो लगता है कि हमको पांचों इंद्रियों के द्वारा एट ए टाइम सब कार्य चल रहा है, क्योंकि वो फास्ट उसका पलटना होता है, हम देखते भी हम सुनते भी ऐसा लगता है, उसमें क्रम है। बिल्कुल बनते हैं, अभी हम कब तक बनेंगे, जब तक जेदगातिकरण नहीं हुआ तब तक, अभी तक के गुणसारे मुनियों को भी सर्वघाती देशघाती दोनों ही बंद हैं, बंद दोनों प्रकार के, यहाँ पर जाकर जो देशघाती रूप बंद होने की योग्यता यहाँ आ गई, इतनी विशुद्धि के साथ। है ना, पर वो सजातीय जो बंधने वाले में संक्रमण होते रहते हैं, अभी किसका किसका कहाँ कहाँ संक्रमण होता है, वो कर्मकांड के लास्ट में है ना, बहुत बड़ी स्थिति है, वो कौन सा किसमें संक्रमण होता है और कौन सा संक्रमण होता है, किसी का अदर पर संक्रमण है, किसी का गुण संक्रमण है, किसी का विद्यास है, उसके झमेले में हम अभी नहीं गए, क्योंकि वो विषय पूरा अलग है। अभी यहाँ संक्रमण होता है बस इतनी बातें कहकर, यानी गुणित प्रमाण में जो गुण संक्रमण होता है वो यहाँ हो जाता है। अरे सत्ता तो जब तक क्षय नहीं होता सबकी सत्ता बनी रहेगी, कोई सत्ता में से जाने वाला नहीं, चिंता मत करो, अपनी सारी प्रकृति सेफ है, हम यही रुकते हैं अभी। बोलो 2400 भगवान।